अहद को जैसे ही ईशानी दिखाई दी, वो जैन के घर के आगे आर्मी के साथ खड़ा था। हालांकि जैन वापस आ गया था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अहद उल्टा जैन पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसने एक इंडियन जासूस को अपने घर में पनाह दे रखी है। अहद ने ईशानी को 10 मिनट का टाइम दिया था ताकि वो अपनी मर्जी से सरेंडर कर दे। जब 10 मिनट बाद भी ईशानी बाहर नहीं आई तो अहद आर्मी के साथ अंदर चला गया था। उसके साथ जैन भी था। उन आर्मी सोल्जर्स में आदम और साद भी थे। वो जैन के पास आए। आदम ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में सबसे बचकर कहा, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ज़रूर दोनों लड़कियाँ बाहर गई होंगी, तुमने उन दोनों को इन्फॉर्म तो कर दिया था ना, जैन ने हल्के गुस्से में कहा। उसने इतना यकीन करके ईशानी और जन्नत को एक साथ छोड़ा था, लेकिन उन दोनों ने थोड़ी देर की मौज मस्ती के चक्कर में जैन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, तो उसे गुस्सा आना ही था। आदम ने ना में सिर हिला दिया। उसने सर झुकाकर धीरे से कहा, मौका नहीं मिला, कल पूरी रात ड्यूटी पर थे। इससे अच्छा मेले में जाने का प्लान नहीं करते तो अब तक घर आ जाते और ये सब गड़बड़ नहीं होती। ज़रूर वो दोनों भी मेले में गई होंगी और ये जन्नत का ही आइडिया होगा, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल बच्ची है वो, जैन ने कहा। जैन आदम और साद बातें करते हुए पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो घर के अंदर पूरी तरह पहुंचे तो उन्होंने देखा घर खाली था। थोड़ी ही देर में अहद ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिला था। गुस्से में वो जैन के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोला, जब हमने उस लड़की को अंदर घुसते हुए देखा था तब वो यहाँ से कहाँ गायब हो गई, यहाँ तो कोई नामो निशान भी नहीं है। सच सच बताओ तुमने उसे कहाँ छुपाया है, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब तक जैन ईशानी की वजह से चुप था, लेकिन ईशानी के वहाँ ना होने पर वो अब अहद की बदतमीज़ी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैन ने अहद को खुद से अलग किया और थोड़ा दूर धकेलते हुए गुस्से में कहा, हम कब से आपकी बातें सुने जा रहे हैं और आप है कि बकवास करने से बाज नहीं आ रहे। आपने खुद देखा कि हम बाहर से आए थे और हमारा घर बंद था। न जाने कब से जासूस लड़की और ये सब बकवास कर रहे हैं, हमारा घर भी बिखेर कर रख दिया है। हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, कैप्टन अहद, अपनी गलतफहमियों के चलते पाकिस्तान आर्मी का वक्त ज़ाया करना बंद कीजिए और हमारे घर से बाहर निकलिए, वरना हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन तो हम आपके खिलाफ लेंगे, अहद ने जैन को घूरते हुए कहा। आपकी पड़ोसन ने आपके घर में एक लड़की को देखा था जो हमारे यहाँ की नहीं लगती थी। हम उसकी गवाही के हिसाब से साबित करके रहेंगे कि वो लड़की आपके यहाँ ही रुकी थी। सबसे पहले हमें आपकी मंगेतर जन्नत से मिलना है, वो उसी के साथ थी और हमने खुद उन्हें इस घर में एक साथ घुसते हुए देखा था। और क्या सबूत है आपके पास इस बात का? कुछ देर पहले तो नरगिस अप्पी की गवाही कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी, और अब उनका सहारा लेकर आप हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जैन ने भौंहें उठाकर पूछा। अहद के पास ईशानी की फ़ोटो थी, लेकिन वो चाहकर भी जैन को नहीं भेज सकता था। वो तस्वीर उसने सिर्फ विक्रांत को भेजने के लिए क्लिक की थी और बाद में उसने उसे डिलीट कर दिया था ताकि वो इस मामले में फंस न जाए। हम कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से उन्हें अंदर जाते हुए देखा था, तो इतना सबूत काफ़ी नहीं है क्या? हम झूठ क्यों बोलेंगे? अहद गुस्से में तिलमिलाकर बोला। आप बताइए कि हम झूठ क्यों बोलेंगे? जब हम कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई इंडियन लड़की नहीं रह रही है तो फिर आप हम पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जैन ने जवाब दिया। मामला काफ़ी बढ़ गया था और वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए थे। उनसे जूनियर लेफ्टिनेंट अरशद को उनके बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। अरशद ने उन दोनों के बीच में आकर तेज़ आवाज़ में कहा, खुदा के लिए आप दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना बंद कीजिए और इस मामले को जनरल से शेयर कीजिए। कैप्टन अहद, आपके कहे मुताबिक हमें यहाँ कोई जासूस नहीं दिख रही है। जासूस तो छोड़ो, यहाँ तो कोई मक्खी भी नहीं है, बोलते हुए उसने जैन की तरफ देखकर पूछा। कैप्टन जैन, आपकी पड़ोसन की बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपने कहा कि आपकी मंगेतर आपके घर आती जाती रहती है, तो हमें उनसे मिलना है और उनकी गवाही चाहिए। हाँ, बुलाओ उस लड़की को, कहाँ है वो? मैंने उसी के साथ उसे अंदर आते हुए देखा था, अब वही सच बताएगी, अहद ने अग्रेसिव होकर कहा। कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं होगा, सीधा जनरल से जाकर बात होगी। अब आप दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करें, अरशद ने सख्त आवाज़ में कहा और उन्हें चुप करवा दिया था। अरशद पाकिस्तान आर्मी के साथ वापस आर्मी कैंप लौट रहा था। उनके साथ जैन और अहद भी थे। अब ये मामला आगे तक जाने वाला था। भले ही आज ईशानी बच गई हो, लेकिन वो लोगों की नज़रों में आ गई थी। ऐसे में जैन का उसे वहां से निकाल पाना आसान नहीं रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत इस उम्मीद में बैठा था कि ईशानी पकड़ी गई है। ये सोचकर उसने ईशानी की फ़ोटोज़ रुद्राक्ष को भेज दी थी। रुद्राक्ष का फ़ोन बंद था क्योंकि वो एक मीटिंग में था। शाम को जब उसने अपना फ़ोन ऑन किया और ईशानी की फ़ोटोज़ देखी तो वो उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव थे। ईशानी जिंदा थी, ये जानकर उसके दिल को तसल्ली मिली, लेकिन साथ ही वो तस्वीर विक्रम ने भेजी थी, ये एक अच्छी खबर नहीं थी। विक्रम का उन तस्वीरों का भेजने का मतलब साफ था कि अब वो ईशानी का नाम लेकर रुद्राक्ष को फिर से ब्लैकमेल करने वाला है। क्या लगता है, रुद्राक्ष विक्रांत के आगे घुटने टेक देगा या फिर बच जाएगा? ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। चलिए समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।